आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनु और आज मैं आपको पढ़ूंगी चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये क्लास 10th के साइंस का 11th चैप्टर है और आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया है। इस चैप्टर के अंदर लास्ट क्लास में हमने समझा था ह्यूमन आई का इंटरनल स्ट्रक्चर। ह्यूमन आई का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसमें अलग अलग ऑर्गन होते हैं जिसका अलग अलग फंक्शन होता है। तो हमने सबसे पहले तो ये समझा था कि ह्यूमन आई एक ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन है, जिसका काम है कि जो लाइट आ रही है उसको परसीव करे और हमें मदद करे ताकि हम हमारे आसपास की चीजों को देख सके, कलर्स को परसीव कर सके। तो बेसिकली ह्यूमन आई एक सेंस ऑर्गन है, जैसे कि बाकी सारे सेंस ऑर्गन होते हैं, नोज होता है या फिर ईयर्स होते हैं, सिमिलरली आईज भी एक सेंस ऑर्गन है, लेकिन ये एक ऐसा सेंस ऑर्गन है जो हमें कलर देखने के लिए या फिर चीजों को देखने के लिए हेल्प करता है। तो जाहिर सी बात है, अगर हमारी आईज को कलर देखने में हेल्प करना है तो कलर इस पर पड़ना चाहिए, लाइट इस पर पड़ना चाहिए। तो जिस रास्ते से लाइट इस पर पड़ता है वो होता है कॉर्निया। कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना हुआ है और ये कॉर्निया जो होता है आईज के फ्रंट पार्ट पे होता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फिगर 11.1 में दिखा गया, बाहर जो आगे सबसे आंखों के है थोड़ा सा बल्ज है, थोड़ा सा उगा हुआ है, लेकिन ये जो है ये ट्रांसपेरेंट है और ये कॉर्निया है, एक लेयर जैसी है और ये कॉर्निया है बेसिकली। तो इसी के थ्रू लाइट एंटर करती है, जब लाइट एंटर कर जाती है तो उसको और अंदर पहुंचते हैं, लेंस तक पहुंचना है। तो लेंस तक पहुंचने से पहले वो क्या करती है, वो सबसे पहले तो कॉर्निया से आती है, कॉर्निया से अंदर आके कॉर्निया के अंदर एक जेली लाइक मटेरियल होता है जो कि कॉर्निया और लेंस के बीच के कंपार्टमेंट में भरा हुआ होता है, जिसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। तो लाइट ने क्या किया, कॉर्निया से एंटर की, उसके बाद वो एक्वस ह्यूमर में एंटर की, उसके बाद उसको एक ओपनिंग से पास करके लेंस पर पड़ना होता है और वो ओपनिंग जो होती है वो प्यूपिल कहलाती है। अब ये जो ओपनिंग है ये अपना साइज बढ़ा या घटा सकती है अकॉर्डिंगली, कितना लाइट है उसके हिसाब से ये अपना साइज बढ़ा या घटा सकती है। अगर इसे देखना है, अगर इसे लगता है कि बाहर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है तो उस केस में ये अपना जो आकार है उसे घटा देती है, अपनी ओपनिंग को घटा देती है प्यूपिल, और अगर बाहर की लाइट बहुत कम है तो ऐसे में ओपनिंग बहुत बड़ी कर देती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट पड़े और चीजें आसानी से नजर आए। तो एक एक नॉर्मल इंटेंसिटी की लाइट ही ये जो प्यूपिल है ये आंख में एंटर करने देती है ताकि हमारी आंख जो है वो डैमेज ना हो पाए। अगर आप ऐसे ही अचानक से कम रोशनी वाली जगह से अचानक बाहर ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां एकदम ही ब्राइट रोशनी होगी तो अचानक ऐसे चेंज होने से आपकी आंख खराब हो सकती है बहुत ज्यादा लाइट पड़ने से। तो ऐसे में क्या होता है कि जो प्यूपिल है वो एक डायमीटर का वेरिएशन करता है ताकि आपकी आंख में एक नॉर्मल इंटेंसिटी की लाइट पड़े और उससे ज्यादा ना पड़े ना उससे कम पड़े। ज्यादा पड़ेगा तो दिखाई वो खराब हो जाएगी आंखें, ज्यादा अगर इंटेंसिटी की लाइट पड़ जाएगी, जरूरत से ज्यादा पड़ जाएगी तो आंख खराब हो जाएगी, अगर कम पड़ेगी तो दिखाई नहीं देगा। तो इसी वजह से प्यूपिल का डायमीटर चेंज होता है। अब प्यूपिल के डायमीटर को चेंज करने के लिए मसल्स की बनी हुई एक स्ट्रक्चर होती है जिसे आयरिस कहते हैं। यही कलर्ड पार्ट होता है, जो अलग अलग लोगों की आंख का रंग अलग होता है वो आयरिस के कलर की वजह से ही होता है। डिफरेंट डिफरेंट लोगों में आयरिस का कलर डिफरेंट होता है। आयरिस एक मसल्स से बना हुआ स्ट्रक्चर है जो कि प्यूपिल के डायमीटर को वेरिएशन देने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर लाइट ने कॉर्निया से एंटर किया, फिर एक्वस ह्यूमर से होता हुआ ये प्यूपिल में पहुंचा। प्यूपिल एक ओपनिंग है, प्यूपिल से पास करके ये लेंस में पहुंचा। आईज की जो लेंस है हमारी आंखों की आई लेंस, उस पर लाइट पड़ेगी इस बार, और लेंस जो है ये एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल से बना हुआ है। और हमारे ह्यूमंस में एक खास बात होती है कि हमारा आई लेंस जो है वो अपना फोकस चेंज कर पाता है और वो सिलरी मसल्स की वजह से चेंज कर पाता है। सिलरी मसल्स हमारे लेंस को हेल्प करती है कि वो अपना फोकल लेंथ जो है उसे चेंज करे, कर्वेचर को बढ़ाए या घटाए, किस हिसाब से बढ़ाए या घटाए ये देख करके कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, दूर रखा है कि पास रखा है, तो उसी हिसाब से फोकल लेंथ की वेरिएशन चाहिए होगी। अगर दूर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसके लिए फोकल लेंथ ज्यादा चाहिए होगी। तो जो हमारी सिलरी मसल्स हैं वो फोकल लेंथ बढ़ाने और घटाने में हेल्प करती हैं हमारे लेंस के कर्वेचर को चेंज करके। तो इसको पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। हमारी आईज में जो ये एबिलिटी है टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, इसे अकोमोडेशन कहते हैं। और ताकत जो है अकोमोडेशन की हमारे आईज में मौजूद है तो इसीलिए इसे पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि लाइट लेंस से पास करके फिर कहाँ पड़ती है, रेटिना पर पड़ती है। रेटिना जो है पास लाइट सेंसिटिव सब्सटेंसेस होते हैं, लाइट को परसीव कर पाता है, डिटेक्ट कर पाता है, उसके बाद लाइट को वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और न्यूरॉन्स में सेंड कर देता है सिग्नल को, ताकि जो सिग्नल है वो ब्रेन में पहुंचे और जो लाइट परसीव की गई है वो क्या लाइट है, किस चीज से निकल रही है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज जो है वो हमारे ब्रेन में बनती है और हमें चीजें दिखाई पड़ती हैं। साथ में हमने यहाँ पर बात की थी कि एक मिनिमम डिस्टेंस होती है जिस तक हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखें तो हमें दिखेगा, अगर उससे भी कम डिस्टेंस कर देंगे तो वो हमें उतना क्लियरली नहीं दिखता, ब्लर हो जाती है इमेज। तो वो मिनिमम डिस्टेंस जिस पर हम किसी ऑब्जेक्ट को क्लियर इमेज देख सके वो कहलाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, या फिर इसे नियर पॉइंट भी कहते हैं, और एक हेल्दी ह्यूमन आई के लिए 29 सेंटीमीटर होता है। सिमिलरली एक फार पॉइंट भी होता है, फार पॉइंट मतलब कि कितनी दूरी तक आप देख सकते हैं क्लियरली किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज आप क्लियरली ऑब्टेन कर सकते हैं कितनी ज्यादा दूरी तक, तो ये इंफिनिटी लिया जाता है कि आप इनफिनिट डिस्टेंस तक की चीजों को इजीली देख सकते हैं, इसे फार पॉइंट कहते हैं। तो इतना सारा हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, अब हम आज की क्लास को शुरू करेंगे और इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों आंख जो होती है उसमें जो लेंस है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि लेंस जैसा बचपन में काम कर रहा है वैसा एंड तक हमारा काम करता रहेगा, कुछ कुछ दिक्कतें आती जाती हैं लाइफ में। तो हमारी आंखों में जो आपने एक्वस ह्यूमर पढ़ा था, एक्वस ह्यूमर क्या था, एक जेली लाइक मटेरियल था, ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो कॉर्निया और लेंस के बीच वाले कंपार्टमेंट में भरा है। सिमिलरली एक जेली लाइक मटेरियल लेंस और रेटिना के बीच वाले कंपार्टमेंट में भी भरा है जिसे विट्रस ह्यूमर कहते हैं। तो एक्वस ह्यूमर के आगे क्या होता है कि एक दूधिया सी झिल्ली बन जाती है, मतलब व्हाइटिश कलर की, जैसे क्लाउड होता है उसके कलर की एक झिल्ली एक परत सी बन जाती है, वो बूढ़े लोगों में बन जाती है। तो उससे उनकी विजन जो है वो काफी हद तक प्रभावित पड़ती है, उसको बहुत फर्क पड़ता है, कम दिखने लगता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ऑपरेशन करना पड़ता है। तो जो ये बीमारी है इसे कैटराक्ट कहते हैं, हिंदी में मोतियाबिंद कहते हैं। तो क्योंकि ये एक लेयर जैसी होती है तो इसे ऑपरेशन करके इजीली रिमूव किया जा सकता है। उसके बाद बच्चों आप लोग कभी सोचते होंगे कि हम लोगों को, हम इंसानों के पास दो आंखें क्यों हैं, एक ही से क्यों नहीं काम चलाया गया। इवोल्यूशन करते करते ऐसी जरूरत समझी गई कि दो आंखें जो है वो एक आंख से बहुत बेहतर है। इसके काफी सारे फायदे हैं, इनमें से फायदे कुछ कुछ ऐसे हैं कि जैसे मान लो आपकी एक ही आंख होती तो आप अपनी एक आंख को क्लोज करके दूसरी आंख से देखने की कोशिश करो, आपको जो चीजें दिख रही हैं वो सारी की सारी नहीं दिखेंगी। आप दोनों आंखों से जितना देखते हैं उतना सारा आपको एक ही आंख से एक ही बार में नहीं दिखेगा। तो ये एक आंख होने से जो हमें फील्ड ऑफ व्यू मिलता है, जितनी जगह पर हम देख पाते हैं, उसके कंपैरेटिवली अगर हम दो आंखों से देखें तो हम ज्यादा जगह तक चीजों को देख सकते हैं। तो हमारा फील्ड ऑफ व्यू जो है वो वाइड हो जाता है, वो बढ़ जाता है जैसे ही हम दो आंखों का इस्तेमाल करके चीजों को देखें। ऐसा बताया जाता है कि अगर आप एक आंख से देखते हैं और हॉरिजॉन्टली आप देख रहे हैं, फ्लैट में देख रहे हैं आप, तो लेफ्ट टू राइट सपोज आप देख रहे हैं, फिर राइट टू लेफ्ट देख रहे हैं, इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कहते हैं, राइट टू लेफ्ट या फिर लेफ्ट टू राइट, और ऊपर से नीचे की ओर को वर्टिकल डायरेक्शन कहते हैं। तो आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बारे में बताया जा रहा है। अगर आप हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं तो आप अगर एक आंख से देख रहे हैं तो आप 150 डिग्री तक देख सकते हैं क्लियरली, जितनी भी चीजें 150 डिग्री के एरिया में रखी होंगी वो सारी आपको आराम से दिखेंगी। लेकिन अगर आप दो आंखों से देखते हैं तो आपका फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाता है, क्योंकि आप अब 150 की बजाय 180 डिग्री तक की चीजों को आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका फील्ड ऑफ व्यू इंक्रीज हो गया दो आंख होने की वजह से। तो एक तो ये फायदा है, दूसरा फायदा ये है कि आपको कोई फेंट ऑब्जेक्ट है जिसपे लाइट बहुत कम पड़ रही है, ये आप अगर एक ही आंख से देखेंगे तो वो उसकी क्लियर इमेज उतनी नहीं बनेगी आपकी आंख पर, हो सकता है कि आपका उस पर ध्यान भी ना पड़े। लेकिन अगर दो आंखें होंगी तो आप उस फेंट ऑब्जेक्ट को भी उसकी इमेज को ऑब्टेन कर पाएंगे अपने कॉर्टेक्स में, अपने ब्रेन में, और इजीली उसे देख पाएंगे। तो यहाँ पर काफी एडवांटेजेस हैं दो आंख होने के, इसीलिए इवोल्यूशन होते होते हमें दो आंख मिली। दूसरा, आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो प्रे एनिमल्स होते हैं, प्रे एनिमल्स कौन होते हैं, जो शिकार करते हैं, तो ऐसे एनिमल्स जो हैं उनकी दो आंखें जो हैं वो किस तरीके से होती हैं, लेटरली प्लेस्ड होती हैं। प्रे एनिमल्स मतलब जिनका शिकार किया जा रहा है, जैसे कि खरगोश या फिर चूहा, तो ये ऐसे जो एनिमल्स है जिनका शिकार किया जाता है इनको प्रे एनिमल्स कहते हैं, और जो शिकार करते हैं वो तो प्रीडेटर होते हैं। तो जिन एनिमल्स का शिकार किया जाता है उन्हें प्रे कहते हैं, और जो एनिमल्स शिकार करते हैं उन्हें प्रीडेटर्स कहते हैं। तो जो प्रे एनिमल्स होते हैं इनको शिकार तो करना नहीं होता, तो इनमें क्या होता है कि इनकी आंखें जो है वो लिटरली प्लेस्ड होती है। यानी कि आप देखो आपकी आंखें कैसे हैं, फ्रंट में प्लेस्ड है, सामने की तरफ प्लेस्ड है। ऐसा नहीं कि एक्सट्रीम एक लेफ्ट पे है और एक एक्सट्रीम राइट पे है, इस तरीके का नहीं होता। लेकिन आप किसी खरगोश की आंख को देखो, उसका आंख ऐसे होता है कि एक लेफ्ट में है और एक राइट में है। तो इसे लेटरली प्लेस्ड कहते हैं। हम लोगों का, हम ह्यूमंस का फ्रंटली प्लेस्ड होता है। तो इन लोगों के लेफ्ट और राइट में इस तरीके का आंख होने से क्या होता है कि इनका फील्ड ऑफ व्यू और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये क्या कर सकते हैं कि ये अपनी लेफ्ट आंख से और राइट आंख से मिला करके ये साइड की चीजें भी देख सकते हैं और फ्रंट की चीजें भी देख सकते हैं। हम ह्यूमंस जो है, हम लोग अपने बिल्कुल लेफ्ट की चीजें अपना सिर टेढ़ा ना करें तो हम देख नहीं सकते हैं। लेफ्ट में अगर हमें कोई चीज देखनी है तो हम आंखों को सामने की तरफ रख के लेफ्ट की सारी चीजें नहीं देख सकते, हमें अपना सिर जो है उसे टेढ़ा करना पड़ेगा ताकि हम चीजों को देख पाए। लेकिन जो प्रे एनिमल्स है जिनका शिकार होता है, इस तरीके के एनिमल्स जो है, इनमें एक खास बात ये होती है कि इनकी आंखें ही लेफ्ट में और राइट में प्लेस्ड है, एक्सट्रीम लेटरल पोजिशन पे प्लेस्ड है, जिसकी वजह से ये बिना सिर को टिल्ट किए भी, बिना सिर को इधर उधर मूव किए भी ये चीजों को आसानी से देख सकते हैं। तो इनको एक और भी ज्यादा वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिलता है। तो यहाँ पर जो ये प्रे एनिमल्स है इनको फायदा मिल रहा है कि इनको एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिल रहा है। तो हम ह्यूमंस में क्यों नहीं है इस तरीके की आईज, एक लेफ्ट में और एक राइट में? हमारे आंखों को क्यों फ्रंटली प्लेस्ड किया गया है? तो इसलिए किया गया है क्योंकि हम लोगों की जो फ्रंटल पोजिशन में आईज है, इसका एक दूसरा फायदा ये है कि हम लोगों को एक स्टीरियोप्सिस का फायदा मिल जाता है। स्टीरियोप्सिस बेसिकली एक फिनोमिना है जिसके जरिए हम ह्यूमंस या फिर हमारे जैसे जो भी एनिमल्स हैं जिनकी आंखें हमारी जैसी हैं, तो हम लोगों में एक खास बात होती है कि हमारी आंखें जो है कौन सी ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखी है इसका अंदाजा लगा लेते हैं। इसे स्टीरियोप्सिस कहते हैं। जैसे आपको पता चल जाता है, बिना आप नापे भी कह सकते हैं कि हाँ दो हाथ की दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है या फिर चार कदम की दूरी पर कोई चीज रखी है, तो ये अंदाजा आप लोगों को हो जाता है। तो ये खासियत हमारी आंखों की है कि हमारी आंखों में ये इनबिल्ट कैपेसिटी है, पहले से ही हमारी आंखों में ये क्षमता है कि वो चीजें कितनी दूरी पर रखी हैं इसका अंदाजा लगा सकती हैं। लेकिन जो दूसरे एनिमल्स हैं जैसे कि प्रे एनिमल्स जो है, इनकी आंखों में इस तरीके का फिनोमेना नहीं देखा जाता। ये नहीं बता सकते कि कितनी दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, बस ये समझ सकते हैं कि कोई चीज है उनके जो मतलब लेफ्ट में भी कोई चीज होगी तो उसे वो डिटेक्ट कर लेंगे, और बहुत एक्सट्रीम लेफ्ट में भी होगी तब भी आसानी से डिटेक्ट कर लेंगे। लेकिन हम नहीं कर पाएंगे तब तक जब तक हम अपना सिर को रोटेट नहीं करते। तो हमें, लेकिन हम लोगों को दूसरा फायदा ये मिल गया कि हम चीजों की कितनी दूरी पर कोई चीज रखी है ये हम बता देते हैं अपनी आंखों की हेल्प से। इसे स्टीरियोप्सिस कहते हैं कि डेप्थ का फाइंड कर पाना, डेप्थ या फिर कितनी डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखी है उसका अंदाजा लगा पाना आंखों की मदद से, इसे स्टीरियोप्सिस कहते हैं। अब एक और बात इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि आप अपनी एक आंख से कोई चीज देखिए वो क्लोज करके, दूसरी आंख को क्लोज करके आप एक आंख से कोई भी ऑब्जेक्ट देखिए। अब आप पहली वाली आंख को क्लोज करो और दूसरी वाली आंख से देखो, आप ये नोटिस करते हैं कि दोनों ही आंखों से हम सेम ऑब्जेक्ट को तो देख रहे हैं लेकिन उसका कुछ अलग सा इमेज बनता है एक आंख से देखने पर और दूसरी आंख से देखने पर। तो हमारा ब्रेन भी बेसिकली यही काम करता है। हमारी दोनों आईज जो हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट की डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस जो हैं वो सेंड करती हैं ब्रेन में। उसके बाद ब्रेन जो है उन दोनों को कंबाइन करके उसके बाद दोनों की जो सिग्नल्स पहुंची है, एक आंख से जो सिग्नल पहुंची है दूसरी आंख से जो सिग्नल पहुंची है, दोनों की सिग्नल्स को जोड़ देता है, उनको फ्यूज कर देता है और उसके बाद हमें कंप्लीट इमेज दिखती है। तो इसीलिए हम लोगों की जो दोनों आंखें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट की कंप्लीट और क्लियर इमेज दिखाने के लिए। तो ये सारी तो बातें हो गई हमारी आईज से रिलेटेड। उसके बाद अब नेक्स्ट हम लोगों को बात करना है अबाउट डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। हम लोगों की जो आईज है, हो सकता है विद टाइम उसमें कुछ डिफेक्ट्स आ जाए, उसमें कुछ गड़बड़ आ जाए। कभी कभी ऐसा भी जरूरी नहीं होता कि कुछ टाइम के बाद डिफेक्ट्स आए। कुछ बच्चे जो होते हैं बचपन से ही उनकी आंखों में कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स होते हैं। उनकी पावर आंखों की उतनी अच्छी नहीं होती जितना दूसरे किसी हेल्दी पर्सन की होगी। तो यहाँ पर आंखों में कई सारी आंखों से रिलेटेड डिफेक्ट्स होती हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है दूरी पर रखें, कितनी दूरी पर रखें उस हिसाब से, अगर बहुत ज्यादा दूरी पर रखें तो कुछ लोगों को बहुत ज्यादा दूरी पर रखी चीजें नहीं दिख पाती, कुछ लोगों को पास में रखी हुई चीजें नहीं दिख पाती।
तो ये सारा हम लोग को पढ़ना है कि कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं और उनके क्या क्या नाम होते हैं। तो सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो है मायोपिया। मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, नियर साइटेडनेस, पास की चीजों को देखने की एबिलिटी है, दूर की चीजों को देखने की एबिलिटी नहीं है। तो उसकी एबिलिटी जो है वो इम्पेयर हो गई है, पार्शली या फिर टोटली, दोनों हो सकती है। तो क्या होता है कि काफी लोग ऐसे होते हैं, ये एज रिलेटेड भी हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि कोई बॉर्न ही है इस डिफेक्ट के साथ। तो ये एक नियर साइटेडनेस है, पास की चीजें बहुत आसानी से दिख जाती हैं, क्लियर दिखती हैं, लेकिन एक लिमिटेड डिस्टेंस के बाद की चीजें नहीं दिखाई देती। सपोज करो कि कोई ऐसा व्यक्ति है, हम ह्यूमंस में क्या कहा जाता है कि फार पॉइंट हमारा इन्फिनिटी है, बहुत ज्यादा दूर की चीजों को भी हम क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन मायोपिक लोग जो होते हैं वो एक सर्टन डिस्टेंस के आगे की चीजें नहीं देख पाते। तो हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि उनका जो फार पॉइंट है वो शिफ्ट होके पास आ जाता है। जैसे मान लो हम हेल्दी कोई ह्यूमन बीइंग है, तो उसका फार पॉइंट क्या है, वो कितनी ज्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस तक देख सकता है, वो इन्फिनिटी तक देख सकता है। लेकिन अगर कोई मायोपिक पर्सन है, तो सपोज करो कोई मायोपिक पर्सन ऐसा है जो 100 सेंटीमीटर से आगे की चीजें नहीं देख पाता, तो बेसिकली हुआ क्या, उसकी जो फार पॉइंट है वो शिफ्ट होके 100 सेंटीमीटर पे आ गई। तो वो आगे की ओर शिफ्ट हो गई तो उसका फार पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो गया। तो यही हो जाता है जो मायोपिक लोग होते हैं उनमें। तो ये बात तो हो गई कि कैसे हमें अपीयर होता है। बाकी इंटरनली अगर बात की जाए कि आंख की इंटरनल क्या प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर बेसिकली जो इमेज है उसको रेटिना पे पड़ना चाहिए। अगर रेटिना पे इमेज नहीं बनेगी तो हमें नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि फोटो सेंसिटिव जो मटेरियल है वो तो रेटिना पर ही है, बाकी तो और कहीं है नहीं। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि जो मायोपिक लोग होते हैं उनकी इमेज जो ऑब्जेक्ट्स की है वो रेटिना पर ना बनके रेटिना के सामने बन जाती है, रेटिना के फ्रंट पार्ट में, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना द इमेज इज फॉर्म्ड। अब इसके पीछे का कारण एक तो ये हो सकता है कि आई लेंस जो है उसका कर्वेचर बढ़ गया है, उसका फोकल लेंथ जो है वो डिक्रीज हो गया है। तो आप लोगों ने पावर ऑफ अकोमोडेशन वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ है कि जब आंख की लेंस की कर्वेचर बढ़ जाती है, वो मोटी हो जाती है, तो उसमें उसका फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाता है। तो यही दिक्कत होती है, जो मायोपिक लोग होते हैं उनकी आई लेंस जो है उसकी कर्वेचर बढ़ी हुई रहती है, तो उससे उसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है, तो ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है उसकी इमेज रेटिना के सामने बन जाती है, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना इमेज बन जाती है। तो यहाँ पर उसको चीजें नहीं दिखेंगी उस पर्सन को, तो ऐसे में उनको करेक्टिव लेंस दिए जाते हैं। और एक और कारण होता है, एक तो एक्सेसिव कर्वेचर हो जाता है लेंस का, दूसरा ये होता है कि अगर आंख ही इस तरीके से बनी है, वो स्फेरिकल ना होकर के, सपोज करो कि ओवल है, जैसे अंडे का शेप होता है, तो वो गोल पूरा ना होकर के, स्फीयर ना होकर के अगर इलोंगेटेड सी है, तो ऐसे में क्या होगा कि आगे ही बन जाएगी, रेटिना पर नहीं बन पाएगी इमेज, और रेटिना के आगे बन जाएगी, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बन जाएगी। तो ये दो कारण हो सकते हैं, या तो आई लेंस की कर्वेचर बड़ी हो सकती है, मोटी लेंस होगी तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगा, तो इसकी वजह से पास ही में बन जाएगी इमेज और रेटिना पर नहीं बनेगी। दूसरा ये हो सकता है कि आंख का ही कर्वेचर खराब है, आंख जो है वो स्फेरिकल ना होकर के इलोंगेटेड सा है, ओवल सा है, अंडे के शेप का हो गया, तो उसकी वजह से भी रेटिना पर इमेज नहीं बनेगी। तो इसको करेक्ट करने का भी एक मेथड है, हम लोग दूसरे लेंसेज यूज कर लेते हैं ताकि फोकल लेंथ जो है इस बारी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए और रेटिना पर इमेज की फॉर्मेशन हो। और मायोपिक लोगों के लिए जो लेंस यूज की जाती है वो कनकेव लेंस यूज की जाती है। आप लोग देखो यहाँ पे, आपको डायग्राम से बहुत आसानी से समझ आएगा, आप पेज नंबर 189 पर आ जाओ और फिगर 11.2 देखो, इसमें आप बी पार्ट देखो, मायोपिक आई में देखो कैसे दिखाया है कि इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बन गई है इमेज, क्योंकि लाइट जो है वो कहाँ कन्वर्ज कर रही है, रेटिना के सामने कन्वर्ज कर रही है, हम चाहते हैं रेटिना पर कन्वर्ज करें, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम कनकेव लेंस यूज कर ले रहे हैं सी पार्ट में, फिगर 11.2 सी पार्ट में आपने कनकेव लेंस यूज किया है, जिसकी वजह से इस बारी फोकस कहाँ हो रही है, सारी रेस इस बारी वो सारी रेस फोकस हो रही है रेटिना के ऊपर, तो बेसिकली एक डाइवर्जिंग लेंस, आपको पता है कनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, तो एक डाइवर्जिंग लेंस मायोपिक लोगों के लिए हेल्पफुल होती है, उनके आंखों में इमेज रेटिना पर बनने के लिए मदद करती है। तो आपको ये भी पता है कि कनकेव लेंस जो होती है उसकी पावर नेगेटिव होती है, तो आपको कभी भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो बोले कि उनकी नेगेटिव में पावर है, तो आप समझ जाइए कि उनको मायोपिया की परेशानी है और उन्होंने कनकेव लेंस यूज किया है। तो इस तरीके से यहाँ पर मायोपिया के बारे में बात हो गई। अब हम अगली डिजीज के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम है फार साइटेडनेस। तो इसको नाम से आपको समझ में आ रहा है, फार साइटेडनेस, दूर की चीजें दिखती हैं, पास की चीजें नहीं दिखती है, नजदीक की चीजें नहीं दिखती है, क्लियरली नहीं दिखती है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि आपको पता है कि हम एक मिनिमम डिस्टेंस तक चीजों को देख सकते हैं और वो हेल्दी ह्यूमन आई में 25 सेंटीमीटर है, जिसे हम नियर पॉइंट कहते हैं, ह्यूमंस का नियर पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है हाइपरमेट्रोपिया में कि अब लोगों को 25 सेंटीमीटर पर रखी चीज नहीं दिखेगी, उनको चीज तब दिखेगी जब मान लो कि उनको ऑब्जेक्ट्स 75 सेंटीमीटर पर रखी हो। तो जो डिफेक्टेड लोग होते हैं जिनको हाइपरमेट्रोपिया की दिक्कत होती है, उनमें क्या होता है कि वो पास की चीजें नहीं देख सकते, उनका जो नियर पॉइंट है वो शिफ्ट होके आगे उसको बढ़ जाता है, डिस्टेंस बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अब वो 25 सेंटीमीटर पर रखी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं देख सकते, उसके लिए चाहिए होगा कि वो उन ऑब्जेक्ट्स को थोड़ा आगे रखें तब जाकर के उनको चीजें दिखती हैं। आपने कभी देखा भी होगा कई सारे एल्डरली लोग होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, तो उनको अगर कोई चीज हम दे दे रीड करने के लिए तो वो उस चीज को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, थोड़ा दूरी पर रखते हैं, तब जाकर के वो प्रॉपरली रीड कर पाते हैं। तो वो इसलिए होता है क्योंकि हम जो नॉर्मल ह्यूमंस हैं उनकी हेल्दी अगर आईज हैं तो वो 25 सेंटीमीटर पर रखी चीजों को इजीली देख पाएंगे, उसकी इमेज को आंख पे बना पाएंगे और वो इजीली इमेज फॉर्मेशन होगी वहां पर। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे हाइपरमेट्रोपिया की परेशानी है तो उसमें क्या होता है कि वो 25 सेंटीमीटर पर रखी चीजें नहीं देख सकते। 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखा हो तब तो बाकी लोगों के लिए भी दिक्कत है, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में जो लोग हैं जिनको हाइपरमेट्रोपिया की दिक्कत है वो 25 सेंटीमीटर पर रखी चीजें भी नहीं देख सकते। उनको चाहिए कि आगे बढ़ाई जाए, जो डिस्टेंस है उसको और इंक्रीज किया जाए, तब जाकर के वो ऑब्जेक्ट्स की इमेज प्रॉपरली बना पाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर देख पा रहे हैं, 25 सेंटीमीटर पर रखी चीजें नहीं देख पा रहे हैं, बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर की चीजें हम देख पा रहे हैं। और इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नियर पॉइंट जो है वो और आगे को शिफ्ट हो जाता है। जैसे आपने मायोपिया में देखा था कि जो फार पॉइंट है वो और कम हो जाती है, उसकी फार पॉइंट की दूरी कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पर नियर पॉइंट की दूरी बढ़ जाती है। तो ऐसे होता है हाइपरमेट्रोपिया में। अब बात करें कि इंटरनली क्या दिक्कत होती है, आंख के इंटरनली क्या परेशानी आती है। तो यहाँ पर बेसिकली जैसे आप लोगों ने मायोपिया में इंटरनली क्या दिक्कत आती है देखा था, यहाँ पर हमारी आंखों में हाइपरमेट्रोपिया और मेट्रोपिया में ये दिक्कत आती है कि फोकल लेंथ जो है आंख का वो काफी बड़ा हो जाता है। तो अगर लेंस थिन है, बहुत ही पतली सी इलोंगेटेड सी लेंस है, तो यहाँ कर्वेचर इसका बहुत कम है, तो ऐसी लेंस की फोकल लेंथ बहुत ज्यादा होती है, उसकी कर्वेचर कम होगी तो उसका फोकल लेंथ बहुत ज्यादा होगा। तो ऐसे में क्या होगा कि रेटिना के भी दूरी पर बन जाता है, जो इमेज है वो रेटिना के भी पीछे बन जाती है। आप लोगों ने देखा है आंखों का एक कर्वेचर होता है, तो उसी कर्वेचर पर रेटिना का एक पॉइंट होता है, अब रेटिना के भी पीछे बन जाती है इमेज, तो वहां पर भी वो उस केस में भी हम लोग इमेज को नहीं समझ पाएंगे कि क्या ऑब्जेक्ट है, क्योंकि लाइट सेंसिटिव मटेरियल जो है, फोटो सेंसिटिव मटेरियल जो है वो रेटिना के ऊपर ही है, तो उसके लिए जरूरी है कि इमेज रेटिना पर बने, लेकिन यहाँ पर इमेज जो बनती है वो रेटिना के पीछे बन जाती है। तो ये पहला कारण जो है ऐसा होने का, ये है कि हमारी लेंस का फोकल लेंथ बहुत ज्यादा है। दूसरा ये है कि हो सकता है कि हमारी आई बॉल ही बहुत छोटी है, जो आंख है हमारी उस वो एक स्फेरिकल शेप की होती है, तो हो सकता है कि वो स्फीयर ही बहुत छोटा है, जिसकी वजह से जो फोकस हो रही है, जो लाइट फोकस हो रही है कन्वेक्स लेंस हमारी लेंस से पास होकर के, वो बियॉन्ड पास हो रही फोकस हो रही है। तो अगर स्फीयर ही छोटा रहेगा तो वहां पर क्या होगा कि लेंस से पास होने के बाद लाइट्स बियॉन्ड रेटिना इकट्ठा होती है, फोकस होती है। तो यहाँ पर दो कारण हो सकते हैं, या तो लेंस का फोकल लेंथ बहुत ज्यादा है, या फिर आंखों का कर्वेचर बहुत कम है, आंखें जो है वो छोटी है, जो पूरा आई बॉल है वही छोटे साइज की है। तो इसको क्योर करने का भी मेथड होता है, और इसको क्योर करने के लिए, हाइपरमेट्रोपिया की परेशानी को क्योर करने के लिए कन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। कन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर जो फोकस हो रही है हमारी लाइट वो बियॉन्ड रेटिना हो रही है, रेटिना के पीछे हो रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि रेटिना पर पड़े लाइट। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम लाइट को कन्वर्ज कराना चाहते हैं, पहले ही रेटिना के ऊपर ही कन्वर्ज कराना चाहते हैं, रेटिना के पीछे नहीं कराना चाहते। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, एडिशनल पावर देने के लिए आंखों को हम एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। आपको पता है आंख के अंदर भी, हम ह्यूमंस के आंख के अंदर भी कॉन्वेक्स लेंस ही होता है, तो उसको और पावर मिल जाती है, उसको और अच्छे से उसकी पावर इंक्रीज हो जाती है, और यहाँ पर वो अच्छे से इमेज जो है उसकी फॉर्मेशन रेटिना पर कर पाता है। आपको यहाँ पर डायग्रामेटिकली भी शो किया गया है, पेज नंबर 190 पर आप देख सकते हैं फिगर 11.3। इसमें देखो बी पार्ट में आपको दिखाया गया है 11.3 के बी पार्ट में किस तरीके से हाइपरमेट्रोपिक आई में जो लाइट है वो कहाँ फोकस हो रही है, रेटिना के पीछे फोकस हो रही है, और जैसे ही कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया गया तो अब वो रेटिना पर फोकस हो रही है। तो यहाँ पर रेटिना पर फोकस कराने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया गया। तो आपको अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे मिले जिनकी आंख में हाइपरमेट्रोपिया की दिक्कत है तो उनकी पावर जो होगी वो पॉजिटिव में आएगी, क्योंकि कॉन्वर्जिंग लेंस जो है वो पॉजिटिव पावर का लेंस होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो दिक्कत आती है वो आती है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया में बेसिकली ये होता है कि व्यक्ति की आंख में लेंस की एक क्षमता होती है पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो प्रेसबायोपिया में व्यक्ति की आंख की पावर ऑफ अकोमोडेशन वाली क्षमता जो स्पेशलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर पावर ऑफ अकोमोडेशन की क्षमता कम कैसे होती है, इसलिए होती है। आपको पता है कि पावर ऑफ अकोमोडेशन की क्षमता मिलती क्यों है, पहले तो ये देखो। आपको पता है कि सीलरी मसल्स जो हैं वो हेल्प करती हैं हमारे लेंसेस को फोकल लेंथ वेरिएशन करने के लिए, फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए। तो सीलरी मसल्स में ही थोड़ी थोड़ी खराबी आने लगती है, वो प्रॉपरली फंक्शन करना बंद कर देता है, वो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो लूज हो जा खराब हो जाती है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। तो इसी वजह से वो लेंस को कर्वेचर चेंज करके नहीं दे पाता। तो जो व्यक्ति हैं वो जो चीजें हैं उसको आसानी से फोकस नहीं कर पाते, उसकी इमेज को फोकस नहीं कर पाते। और यहाँ पर अगर पास में कोई चीज रखी है तो पास की चीजें नहीं दिखती हैं, तभी दिखती हैं जब उसको थोड़ा ज्यादा दूरी पर रखा जाए, और बिना चश्मे के भी चीजें नहीं दिखती हैं। कभी कभी क्या होता है कि सिलरी मसल्स की खराबी होने की वजह से, वीक हो जाने की वजह से, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाने की वजह से जो व्यक्ति है उसको मायोपिया को भी दिक्कत हो सकती है और हाइपरमेट्रोपिया की भी दिक्कत हो सकती है। तो पास की भी चीजें कम दिखती हैं, दूर की भी चीजें कम दिखती हैं, तो कॉम्बिनेशन जो है बेसिकली इसको भी हम प्रेसबायोपिया कहते हैं। तो ऐसा बूढ़े लोगों में ज्यादा देखा जाता है कि जिनको पास की भी चीजें नहीं दिख रही हैं, बहुत कम दिख रही हैं, और दूर की भी चीजें कम दिख रही हैं। तो ऐसे लोगों को बायफोकल लेंसेज दिए जाते हैं, जिसमें कि ऐसा चश्मा बनाया जाता है जिसका अपर पार्ट जो है वो कॉन्केव लेंस से बना होता है और लोअर पार्ट जो है वो कॉन्वेक्स लेंस से बना होता है। ऊपर जब देखेंगे तो सामने की चीजें, वो दूर की चीजें भी देख पाएंगे इजीली, और रीडिंग करने के लिए आपको पास की चीजें जो देखनी होती है तो रीडिंग करने के लिए चाहिए होती है पास की चीजें, देख पाए आप, रीड करना है तभी। अगर दूर की चीजें देखनी है तो उसके लिए अपर पार्ट रखा जाता है और वो कॉन्केव लेंस से बनाते हैं, और लोअर पार्ट जो चश्मे का होता है वो कॉन्वेक्स लेंस से बनाते हैं। तो जब रीडिंग करनी होती है किसी को तो वो नीचे की तरफ देख करके बुक पर फोकस करते हैं। तो इसी को ध्यान में रख के कॉन्वेक्स लेंस को चश्मे के नीचे वाले पार्ट में लगाया जाता है और अपर पार्ट जो है उसको कॉन्केव लेंस से बनाते हैं। आजकल या तो चश्मा भी यूज कर सकते हैं लोग, या फिर आजकल कॉन्टेक्ट लेंसेज भी आते हैं, सर्जरी भी कराई जा सकती है, लेकिन एक एज होती है सर्जरी कराने की भी। आप बूढ़े लोगों में सर्जरी उतनी ज्यादा उसकी अच्छी रिजल्ट्स नहीं होती है, क्योंकि उनकी रिकवरी जो है वो, क्योंकि ओल्ड एज हो गया है तो उनमें इम्यूनिटी थोड़ा वीक हो जाती है, जिसकी वजह से ऑपरेशंस प्रेफर नहीं किए जाते हैं बूढ़े लोगों में। और यंग लोग जो है वो जल्दी रिकवरी कर सकते हैं, तो उनमें ऑपरेशन किए जा सकते हैं। और कॉन्टैक्ट लेंसेज होते तो हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट लेंसेज से कई लोगों को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं, इरिटेशंस हो जाती हैं, आँख रेडनेस हो जाती है, और बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। लेंस अगर लगाए हैं तो ध्यान से, लेंस अगर लगा रहे हैं तो बहुत ध्यान से उसे लगाना होता है, फिर याद करके रिमूव करना होता है, बहुत ख्याल रखना होता है। लेंसेज जो होते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज छोटे साइज के होते हैं, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। लोग प्रेफर करते हैं चश्मा लगाना ही। चश्मा आजकल भी अलग अलग मटेरियल का आता है, फाइबर का होता है, तो वो टूटता नहीं है, मजबूत बनाते हैं आजकल के चश्मे भी, तो चश्मे वगैरह ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग डिफेक्ट्स होते हैं और इनके करेक्टिव मेथड्स भी होते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि पेज नंबर 190 पर है। इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द लेंस ऑफ द आई। तो आप लिखेंगे कि द ह्यूमन आई हैज द पावर और एबिलिटी टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ एंड दिस इज नोन एज अकोमोडेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज नंबर 188 पर जो पावर ऑफ अकोमोडेशन टॉपिक है उसका सेकेंड पैराग्राफ, इसमें लिखा है द एबिलिटी ऑफ द आई टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड अकोमोडेशन। उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ में आप लिखेंगे, पहले ये लाइन लिख देंगे द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड अकोमोडेशन। उसके बाद लिखेंगे द आई लेंस इज कंपोज्ड ऑफ अ फाइबरस जेली लाइक मटेरियल, फर्स्ट पैराग्राफ की लाइन है। फिर आगे लिखेंगे कि इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय द सीलरी मसल्स, द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन दस चेंज इट्स फोकल लेंथ। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं अकोमोडेशन के बारे में। तो ये जो अबिलिटी है बेसिकली इसी को कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर इज बेसिकली अबिलिटी ऑफ अकोमोडेशन एंड अकोमोडेशन इज द अबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, दैट इज कॉल्ड अकोमोडेशन। तो इस तरीके से आप फर्स्ट क्वेश्चन करिए, बाकी नेक्स्ट जो बाकी के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे और आगे बढ़ाएंगे। टॉपिक्स जो है वो आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे हम लोग। तो आप लोग क्या करेंगे कि आपने जो आज पढ़ा है उसे आप रिवाइज कर लीजिए। आपको कोई भी दिक्कत कहीं पर भी परेशानी आ रही हो तो आप अपने टीचर से जरूर अपने डाउट्स पूछिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।